खुदाजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों के रांची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 20 रबीउल अव्वल 1443 हिजरी अक्टूबर की है 27 तारीख सन 2021। आपने इस खूबसूरत सुबह का आगाज किया है मेरे साथ, नाम है मेरा अदील, प्रोग्राम सनराइज विद अदील में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, शायद इक्का दुक्का कोई गाना लेकर भी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं, एक दफा फिर बहुत अच्छे मूड के साथ। ये तो कुछ अजीब आदत सी हो जा रही है यार, सुबह सुबह मूड अच्छा करने की, जहर रात में मैच अच्छा खत्म हो और फिर सुबह तो मूड अच्छा होना ही है। बहरहाल जी प्रोग्राम में इफ यू विश टू पार्टिसिपेट यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप जो है अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर पे तो यू कैन फॉलो मी at Adil underscore Azhar, that's ADEEL underscore AZHAR. Zuhaib Hassan and Zoe Vika ji ki awaaz mein aap sun rahe the Jana. Hope you guys enjoyed that song and yep, it's a bright and sunny morning here in Karachi. Subho ka asal surat hal kya hai mujhe honestly nahi pata because raat mein aajkal sona itni der se ho raha hai ki main is hafte to barring one day I've been missing out on my morning routine. Lekin hopefully things will do hafte ki baat hai, do hafte dhai hafte World Cup aur reh gaya aur uske baad jo hai wo things will get back to normal. Baral ji congratulations ek baar phir se Pakistan ne kamyabi hasil ki. Pakistan ko jo ajeeb o ghareeb tournament ka schedule khelne ko mila, Pakistan ne aap keh sakte hain ki jo uska mushkil part tha wo filhal sar kar liya hai. Do behtareen teamon ke sath 3 din के अंदर दो मैचेस पाकिस्तान को खेलने, दूसरी जानब इंडिया को अपने पहले मैच के बाद एक हफ्ते का ब्रेक दिया गया था, संडे टू संडे उनकी जो है वो आउटिंग हो रही है। लेकिन बहरहाल जी आई थिंक नाउ दैट पाकिस्तानी जो है अपने दोनों मैच जीतने में कामयाब हो गए तो वी रियली कैन नॉट कंप्लेन। आई थिंक द टीम इज ऑन अ रोल, न्यूजीलैंड को भी कल शिकस्त दी। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मुकाबला नजदीकी मामला था, इंडिया वाला मैच तो इट वॉज एन एब्सोल्यूट राउट, लेकिन ये वाला मुकाबला मजेदार रहा। ठीक है, पाकिस्तान की पूरी जो टीम है वो टेस्ट हो गई और हमें अंदाजा हो गया अच्छी तरह कि कौन कितना पानी में है और पाकिस्तान की अप टू द लोअर मिडिल ऑर्डर जो है जाके टेस्ट हुई है ठीक से। सो गेम ऑन है जी, गेम ऑन है एंड टॉकिंग अबाउट गेम ऑन है मैं आज सुबह गेम ऑन है कि कुछ जो है ना वो क्लिप्स देख रहा था और कल लाइव टीवी पर पाकिस्तान टेलीविजन पर जो है वो ईगोस का क्लैश हुआ, दो इंतहाई ईगोस्टिक इंसान जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो भिड़ते हुए नजर आए और वहाँ पे जो वो डॉक्टर साहब बैठते हैं जो कि मुझे लगता है अपनी जाती प्रॉपर्टी की तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं, तो पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स को चलाते हैं, उनका और शुएब अख्तर के दरमियान जो है ना फटा। नो लव लॉस्ट फॉर शुएब अख्तर एज वेल, ज़ाहिर है वी नो शुएब अख्तर भी जो है वो गलत मौकों पे बात करने, अजीब सी बात करने के लिए शोरत रखते हैं, लेकिन फिर भी बाहर आ रही है। वेरी इंटरेस्टिंग क्लिप, आई होप यू गाइस हैव सीन दैट। शुएब अख्तर की तरफ से इस पे एक एक्सप्लेनेशन भी आई है ऑफ व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग, बट लाइव टीवी पर इतने सारे, तो माशाल्लाह वो पैनल इतना बड़ा बिठाया हुआ होता है, आई रियली डोंट नो हाउ डॉक्टर नुमान जो है किस तरह जस्टिफाई करते हैं इतने सारे लोगों को पैनल में बैठा। आप देखें जी जितने आपको इंटरनेशनल चैनल्स नजर आएंगे, दो या मैक्सिमम तीन लोग, इसके बियॉन्ड नजर नहीं आते, लेकिन आई थिंक उस वक्त सेट में अगर हम वो डॉक्टर साहब को मिला लें तो कोई 8 या 9 लोग उस सेट में बैठे हुए थे। इट सीम मोर लाइक एन इंडियन टॉक शो जो उनके यहाँ शाम में चल रहे होते हैं, बट जनाबे वाला सिचुएशन तो अब ये हो गई है। और बहरहाल चलें छोड़े ना, हमें इससे क्या, वो लड़े लाइव टीवी पर, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे, लेकिन हमें जो फर्क पड़ता है वो ये फर्क पड़ता है पाकिस्तान टीम ने अपना जो है वो तकरीबन दिस इज द बेस्ट स्टार्ट, दिस इज पाकिस्तान इज इक्वल देयर बेस्ट स्टार्ट इन द T20 वर्ल्ड कप। हम इससे पहले श्रीलंका में जो वर्ल्ड कप वो 2012 में हुआ था उसका भी हमने ऐसे ही एक स्टार्ट लिया था और पहले दो मैचेस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी और फिर उसके बाद जो है तो उसके बाद जा रहे फिर वो इंडिया वाले मैच और वो सब चीजें आ गई थी, लेकिन नाउ आई थिंक द टीम इज लुकिंग वेरी गुड, एवरीवन इज परफॉर्मिंग एंड ऑल्सो या बिल्कुल जी। आज जाहिर इस मैच की कामयाबी की वो फीलिंग इंडिया वाली तो गेम नहीं है, जाहिर वो तो एक अलग फीलिंग थी, लेकिन इसकी जो फीलिंग थी जाहिर वो इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट थी कि जिस दिन न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करके वो यहाँ से सिक्योरिटी की नामालूम वजूहात की बिना पर यहाँ से गए थे, उसके बाद से दिल में जो है ना वो ये अरमान था कि बस इनको हराना है यार, इनको हराना है, और माशाल्लाह आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। ऑलराइट चलें जी ग्रेट, वैसे पाकिस्तान के लिए भी कल अच्छा दिन था, मैं क्रिकेट टीम के अलावा बात कर रहा हूँ, एक तो पॉलिटिकली एक जो एक आई रियली डोंट नो एक इशू क्रिएट हो गया था पाकिस्तान में डीजी आईएसआई की अपॉइंटमेंट का. इससे पहले कभी भी ये मैटर इशू नहीं बना था. बहरहाल वो इशू भी लग रहा है कि रिजॉल्व हो गया है. और दूसरी जो चीज है वो ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक फ्रंट के लिए जो है वो कल काफी अच्छी खबरें आई हैं. सऊदी अरब जो है वो एक बार फिर से उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं पाकिस्तान को यहाँ सपोर्ट करने के लिए. याद रहे जी, पाकिस्तान इस वक्त आईएमएफ के साथ होने वाले मुजाकरात में काफी अंडर प्रेशर है और आईएमएफ पाकिस्तान से जो है वो काफी मुश्किल जो शर्तें हैं वो मनवाने में लगा हुआ है. यही वजह है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान अभी तक मुजाकरात नहीं हो पा अभी तक मुजाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे हैं. समथिंग दैट वी एक्सपेक्टेड कि पिछले मंडे हो जाएगा और आज अब अगला ट्यूसडे आ गया है, वेंसडे आ गया है, बल्कि ये मुजाकरात जो है ना ये निमट नहीं रहे. और उसकी वजह यही है कि इस वक्त आईएमएफ जो पाकिस्तान से डिमांड्स कर रहा है, पाकिस्तान उनको रेजिस्टेंस शो कर रहा है और कोई मिडिल ग्राउंड निकालना चाह रहा है. लेकिन सऊदी अरेबिया ने कल जो है जो पाकिस्तान की सपोर्ट की बात की है, $3 बिलियन प्लस पाकिस्तान को एक ओवरड्राफ्ट लाइन दी है फॉर द परचेज ऑफ ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया. आई थिंक दीज आर वेरी गुड न्यूज एक्चुअली. सो वैसे भी आईएमएफ का आखिरी ही साल था पाकिस्तान का ये. सो क्या सऊदी से इमदाद आने के बाद पाकिस्तान की पोजीशन रिव्यू होगी या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन. ठीक हो गया जी, ग्रेट. 7:29 आप लोग के मैसेज का सिलसिला शुरू करें बिफोर आई हेड टूवर्ड्स द ब्रेक. हैदर अली का पहला मैसेज आया हुआ है आजकल. क्या आज का पहला, आसिफ एंड रऊफ आर नॉट परफॉर्मिंग सो एवरीवन वाज क्रिटिसाइजिंग देम. नाउ दे परफॉर्म वेल इन द बिग मैच, एवरीवन इज प्रेजिंग देम. So it was just their performance, nothing personal. Nobody needs to apologize for criticism. Absolutely not. I mean, absolutely not. Okay? Hashtag के साथ. I mean, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कल पता नहीं लोग मेरे पीछे पड़े हैं, आप माफी मिले. नंबर वन यार, अबे मेरी बुराई करने से हारिस लोग की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. आसिफ अली का भी ये बात है और सिमिलरली मेरी तारीफ करने से भी फर्क नहीं पड़ रहा था. आप अगर डोमेस्टिक क्रिकेट के ला के स्टैटिस्टिक्स लगाना शुरू कर देंगे, चेपना शुरू कर देंगे ऑन इंटरनेशनल क्रिकेट, नहीं यार, यार दीज प्लेयर्स वर स्ट्रगलिंग. ओके, दीज प्लेयर्स, आई मीन सीरियसली यार, छोड़ दे, रहने दे. इंपॉर्टेंट थिंग इज हूएवर प्लेस फॉर पाकिस्तान, हम उसके साथ खड़े हुए हैं यार. और दैट्स द थिंग. फैजान हयात जो है वो बात कर रहे हैं ब्लैक लाइव्स मैटर के हवाले. अब इसमें बात करेंगे आज हम, बिल्कुल ये जो नीलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसका आपको पता है कि पहली कैजुअलिटी इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है ना वो सामने आ गई है, क्विंटन डी कॉक. ओके जी, सो we'll talk about that. We'll definitely talk about that. Faizan कहते हैं, how BLM is relevant to Asian countries? Many other communities are oppressed in the region. Isn't this all political? बिल्कुल बात करते हैं जी इस वक्त. हैदर अली कहते हैं, क्या कहते हैं जी, हेडलाइन किसकी है जी, BBC की हेडलाइन. हारिस रऊफ की बॉलिंग इसमें ऐसा क्या है मेरे दोस्त, मैं देख लेता हूँ. I'll save this not to forget this day in the future. MashaAllah, Haris and Asif. चलें जी, that's great. बशीर अहमद कहते हैं, सलाम अदील भाई, पाकिस्तान की फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी आ रही है इस वर्ल्ड कप में, आपने नोट क्या किया है? जी बिल्कुल जी, हम इसमें बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज. इनफैक्ट मैं क्योंकि जब टीवी प्रोग्राम पे बैठा हुआ था और वहां पे मैंने ये बात उनको बेसिकली ड्यूरिंग द डिस्कशन दिस गेम इंडिया पाकिस्तान मैच वाले दिन, कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो जब अपनी बस में बैठ रहे थे होटल से निकल के, वो जो वहाँ दुबई फेस्टिवल सिटी में उनका होटल आई थिंक इंटरकॉन में रुके हुए, मुझे देखने में तो ऐसे ही लग रहा था, वहां से वो जब बस में आके बैठ रहे थे तो मैं उसी वक्त कह रहा था, मैंने कहा था यार इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव लग रही है. और फिर जब वो मैदान में नजर आए थे, प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे, एंड देन बाबर जब टॉस पे नजर आए थे, एंड एवरीथिंग वाज लुकिंग वेरी पॉजिटिव. बट वो यही है कि जब एक आपके साथ जब एक मोमेंटम होता है या कॉन्फिडेंस होता है तो फिर आपकी जाहिर है बॉडी लैंग्वेज में ये चीज नजर आ रही होती है. एंड यस्टरडे दे ऑल लुक प्रीटी गुड, और कल भी जो है वो उसका इजहार बेहतरीन तरीके से होता. बल्कि आई डोंट नो अब से कितने लोगों ने फॉक्स न्यूज वाला वो मैथ्यू हेडन का इंटरव्यू देखा है. फॉक्स न्यूज में भी जो क्रिकेट का प्रोग्राम चल रहा होता है उसमें ब्रैंडन जूलियन उसको होस्ट करते हैं. फॉक्स ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, फॉक्स स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया की, और उसमें ब्रैंडन जूलियन और ब्रैडली बैठे हुए थे. एंड आई थिंक मैं सुन रहा था, मैं देख तो नहीं पाया, मगर मेरे ख्याल से हसी जो है बैठे हुए थे और उन्होंने मैट हेडन को जो है वो लाइन पर लिया था. और मैट हेडन ने तकरीबन कोई 10 मिनट बात की थी. एंड वॉट एन इमोशनल टॉक दैट वॉज. अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो फिर आई कैन फॉरवर्ड द लिंक और आई कैन शेयर द लिंक इन फैक्ट ऑन माई टाइम लाइन. इट वॉज सच एन इमोशनल टॉक मैट हेडन और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो ड्रेसिंग रूम के माहौल के हवाले से बता रहे थे. और बाय द वे एंड में उन्होंने डीन जोन्स का भी जिक्र किया था. यू कैन सी के वो काफी जज्बाती हो गए इस पूरी चीज के हवाले से, बिकॉज वो यही कह रहे थे कि डीन जोन्स अगर आज होते तो वो ही वुड हैव बीन सो प्राउड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज वो इतने इमोशनली अटैच हो चुके थे पाकिस्तान के साथ. सो यस इंडीड द बॉडी लैंग्वेज, यस आई टोटली अग्री. मोहसिन अकबर कहते हैं, सलाम एंड गुड मॉर्निंग अदील भाई, द बॉयकॉट हैज बीन अवेंज्ड. भाई तुम जरा लो प्रोफाइल रखो अपना समझे, क्योंकि तुम जानते हो कि क्या सिचुएशन वहाँ पे इस वक्त चल रही है. तो स्टे सेफ ब्रदर. और बिकॉज सुनने में यही आ रहा है कि मकबूजा कश्मीर में मुकदमात भी कायम किए गए हैं. सुना है एक टीचर जो है वो नौकरी से फारिग भी कर दी गई हैं. आई थिंक ये शायद मामला यूपी में कहीं हुआ है शायद, जहाँ पे एक टीचर ने पाकिस्तान के जीतने पर लिख दिया था वी वन. सो उस पर टीचर को जो है वो फारिग कर दिया गया. सो अजीब नॉनसेंस गोइंग ऑन देयर इन इंडिया. डीजे सुमेर कहते हैं मॉर्निंग, कैसे सपोर्ट पाकिस्तान इकोनॉमी. बिल्कुल. इसके अलावा क्या स्टूपिडिटी ऑन एयर बिटवीन डॉक्टर नुमान एंड शुएब अख्तर. ठीक है जी, क्या कह सकते हैं. जीशान बेग साहब, एंड मास्टर कार्ड इज प्रिपेयरिंग टू अनाउंस दैट एनी ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स एंड मिलियंस ऑफ मर्चेंट्स ऑन इट्स पेमेंट नेटवर्क कैन सून इंटीग्रेट क्रिप्टो इनटू देयर प्रोडक्ट. ऑलराइट, मास्टर कार्ड जो है वो हमेशा से काफी ज्यादा ओपन है टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसीज एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड. काफी पहले उन्होंने अनाउंसमेंट वैसे इसकी इनिशियल कर दी थी, बट दिस इज फाइनली हैपनिंग. ऑलराइट, रिजवान खलील साहब कहते हैं सेलिब्रेशंस इन पिशावर, आपने वीडियो शेयर की है, थैंक यू सो मच सर. इसके अलावा अब्दुल हादी इज गिविंग यू मुबारक, ही इज वेरी हैप्पी ऑन दिस. हादी आपको भी मुबारकबाद. एंड जायद खान साहब कहते हैं सलाम एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन पाकिस्तान विन. To all, it was a day belonging to Haris and Asif, but thing is that we won. Anas is also very excited and congratulating you. Thank you so much, Fahim Ali Khan. भाई कैसी तबीयत है फहीम साहब आपकी और आपके अहलो आयाल की. उम्मीद करते हैं कि तबीयत में कल के मुकाबले में आज कुछ बेहतरी आई होगी. एंड वो कहते हैं फर्दर वी हैव अ फेयर चांस टू रीच द सेमी फाइनल. वी हैव अ वेरी सॉलिड चांस नाउ टू रीच द सेमी फाइनल. अभी पाकिस्तान का जो एक अच्छा मैच रह गया है वो अफगानिस्तान के खिलाफ रह गया, एंड देन आफ्टर नमीबिया एंड स्कॉटलैंड. सो दोज मैचेस शुडंट बी प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान. लेकिन अफगानिस्तान कैन वी नो प्रीटी वेल पुट अप द फाइट देयर. पीर जहीर साहब थैंक यू सो मच सर, कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान. कहते हैं फुटबॉल फाइनल हैज बीन प्लेड एट मुबारक विलेज यस्टरडे. इट वाज अ वंडरफुल नीट बाउंटीफुल बीच फुल स्पॉन्सर्ड बाय बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान. सैयद अब्दुल सत्तार साहब अच्छा इज ऑल्सो एम एन ए. ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया खबर शेयर करने का. आपने तस्वीरें वगैरह भी शेयर की हैं इस टूर्नामेंट की, एंड दिस मुबारक विलेज बीच लुक्स रियली रियली ब्यूटिफुल. ऑलराइट, आखिरी मैसेज शामिल करते हैं बिफोर वी हेड टूवर्ड्स द ब्रेक. खुर्रम हसन थैंक यू, आप कहते हैं जी सर जी आसिफ की पिछली गलतियों को माफ कर दें. वही अच्छा खेलता रहेगा परफॉर्म करेगा. हमारी कोई जाती अनाद या जाती नाराजगी तो उसके साथ थोड़ी है, या मेरी कोई डॉक्टर नुमान और शुएब अख्तर वाला पंगा थोड़ी है दोनों के दरमियान. सो बहरहाल जो भी है आगे बढ़ते हैं. बाकी ये सीन है दैट या ओके. स्पेशल शाउट आउट टू अथर महमूद साहब जो कि मेरा प्रोग्राम इस वक्त गैटलिनबर्ग में सुन रहे हैं. बड़ी ज़बरदस्त बड़ी खूबसूरत जगह है, और अभी अमेरिका का जो हमारा 2 साल पहले दौरा हुआ था उसमें बड़ी स्टैंड आउट प्लेस थी. और मुझे खुशी है कि आपने स्मोकी माउंटेन्स जो है विजिट किया. आई एम श्योर इस फॉल के सीज़न में, यानी जैसे हम ऑटम कहते हैं अमेरिकन जैसे फॉल कहते हैं, उसके सीज़न में जो है ये जगह लश माउंटेन्स हैं यार, ये लश माउंटेन्स हैं बिल्कुल. इनको स्मोकी इसलिए कहा जाता है कि देर इज़ ऑलवेज अ लेयर ऑफ मिस्ट इन दीज माउंटेन्स दैट मेक्स देम इवन मोर ब्यूटिफुल. और या आई थिंक एंजॉय योर टाइम सर. ऑटम में तो ये कितना खूबसूरत जो मुख्तलिफ रंग यहाँ पे फैले हुए होंगे. एंड ब्रिलियंट, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वेयर एवर यू आर इन यूएस. एंड चैलेंज जी, विशिंग यू अ ग्रेट टाइम देयर. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, ek baar phir se aapko khush aamdeed kehte hain in the sunrise show with me Adil. And yeah, thank you so much. Kya ji Riyaz ur Rehman sahab, thank you so much sir, aapne Saudi Arab ke hawale se khabar share ki. Kehte hain ji top oil exporter Saudi Arabia aims to become carbon neutral by 2016. Okay, kaafi ambitious target diya hai apne aap ko Saudi Arab ne mahaliyat ke hawale se. Aapko pata hai ki duniya bhar ke bahut सारे ममालिक की जानिब से जो है वो कमिटमेंटें सामने आ रही हैं, उनकी तरफ से इरादे और वादे जो हैं वो किए जा रहे हैं कि कब तक वो अपने आप को कार्बन न्यूट्रल. आइए प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे. व्हाट डज कार्बन न्यूट्रलिटी मींस, इसका मतलब क्या है. आई मीन हाउ डज दैट मैनिफेस्ट. कोई कंट्री अगर कहता है, जैसे चाइना कहता है कि हम आई थिंक 2050 चाइना ये कहता है कि जी हम तब तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे. व्हाट डू दे मीन बाय दैट, आई मीन व्हाट डज चाइना एम टू बिकम. सो सऊदी अरेबिया, जाहिर हम जानते हैं उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन आता है उनकी जीडीपी का, बहुत बड़ा एक ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन कम्स थ्रू दिस ऑयल एंड हाइड्रोकार्बन की प्रोडक्ट. वो कार्बन न्यूट्रल कैसे बनना चाहते हैं और अच्छी अच्छा एम्बिशियस टारगेट उन्होंने अपने अपने आप को जो है ना वो सेट किया है. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ऑलराइट जी, शहजाद इकबाल साहब थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान विन टू यू टू. एंड इसके अलावा हसन मुबीन कहते हैं यू साउंड लाइक जेफरी बॉयकॉट. ओके आई सेड ब्लडी स्टूपिड शॉट दिस इज इमाद. यार इमाद वसीम का शॉट कल, इमाद वसीम क्या करता है यार, अपने फैंस को जलील करवा दिया कल उसने यार. बट तुझसे नहीं लग रहा भाई वो शॉट. मैं कल देख रहा था शो में, सुन रहा था हमारे, आप लोगों को शो देखा होगा, वो हमारे अहमद शहजाद साहब डिफेंड कर रहे थे उनके शॉट को. बहरहाल जो कर सकते हैं वो टीम का ज़ाहिर हिस्सा है और उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं. कहते हैं इमाद के लग जाते हैं ये वाले शॉट. मैंने कहा यार आप इसलिए ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कुछ शॉट खेल रहा है खेलने दें आप इसको. नहीं वो तो खेलने देंगे, कोई कोई रोक सकता है किसी को, लेकिन भाई ये तो मैच की सिचुएशन ऐसी थी कि हमारी बचत हो गई. यही इमाद जो है सिक्स डाउन खेलने आया हुआ होता और इस तरह के स्टूपिड शॉट्स खेल रहा होता वो, तो और उस पर आउट हो जाता तो पता नहीं क्या. आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग थ्रू हिज माइंड यस्टरडे यार. अच्छा जी, खावर नसीम साहब कहते हैं आसिफ ने भी हक अदा कर दिया, शुएब ने भी सीनियर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की. फर्स्ट टाइम अभी तक एक टीम नजर आ रही है और कोच का फर्क भी. बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने. बिलाल अनवर कहते हैं कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑन अनदर ग्रेट विन, प्लीज शेड सम लाइट ऑन क्विंटन डीकॉक. जी बिल्कुल, इस पे हम बात करेंगे. यूसु नवाब कहते हैं भाई आपके फेवरेट डॉक्टर नुमान ने शुएब अख्तर, बिल्कुल जी इस पे हमने बात की है. एंड वासिफ महमूद साहब मुबारकबाद कहते हैं. और बिलाल अहमद, या लॉट्स ऑफ मीम अराउंड, लॉट्स ऑफ मीम्स अराउंड नो डाउट. मुबीन अहमद कहते हैं लिसनिंग टू यू इन लाहौर, माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस है हमारी टीम की. सर शुएब अख्तर वाले मामले पर आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जी दो बहुत ही ईगोइस्टिक शख्सियात का आपस में क्लैश हुआ है और फिर उसके बाद यही हुआ है और लाइव टीवी पर हुआ है. सो लेट्स सी, एंड में इवेंचुअली माफी तलाफी हो जाएगी. खैर ये सब तो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है डॉक्टर नुमान किसी बात पर नाराज हो. आपको पता ना शुएब अख्तर ने जाके थोड़ी सी कुछ बातें कर दी थी इंडिया में कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक बहुत तेज खेलने वाले और एक स्लो खेलने वाले ने जो है ना वो तबाह कर दिया है. आप जानते हैं कि ये इशारा बिल तरतीब शाहिद आफरीदी और मिसबाह उल हक की तरफ था और ये हरभजन के सामने बैठे हुए उन्होंने एक इंडियन लाइव टीवी पर जो है ये बात की थी. हो सकता है कि ये बात दिल में रखी हो. शुएब अख्तर अभी पता नहीं ऑल फॉल क्या बोलते रहते हैं जो भी उनके मुंह में आता है. आई मीन ही इज मोर लाइक अ यूट्यूबर, ये हमारे लेवल का. शुएब अख्तर इतना बड़ा प्लेयर है, जो भी है अपने जमाने का टॉप बॉलर था यार. अगर वो शायद नंबर्स में टॉप नहीं होगा लेकिन एक फियर फैक्टर था. यानी जो तजिए करता है, अभी ये तो हमारे टाइप के तजिए होते हैं यार, ये हमें हमें सूट करते हैं. यानी हम जो सिर्फ बाहर से बैठ के तालियां बजाने वाले और तबसरे करने वाले लोग हैं, बट फॉर अ क्रिकेटर, फॉर अ सीरियस क्रिकेटर, दिस डजंट रियली सूट हिम. आई मीन जस्ट चेक आउट यार. मैं कल वही फॉक्स का, मैं फिर से प्रोग्राम का जिक्र करता हूँ जो फॉक्स क्रिकेट में, फॉक्स स्पोर्ट्स में जो उनका क्रिकेट का प्रोग्राम आता है यार, किस लेवल की प्रोफेशनल टॉक हो रही होती है. सीरियसली यार, आप पता नहीं हमारे यहाँ कब इस लेवल की क्रिकेट पहुंचेगी यार, क्रिकेट डिस्कशन हमारे यहाँ कब उस लेवल के होना शुरू होंगे. उमेर हफीज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. नहीं अच्छा, उमेर का मैसेज है, अदील अंकल का मैसेज है. ऑल राइट, अरहम का मैसेज है. अदील अंकल, इट वॉज सो मच फन चेयरिंग फॉर द टीम ग्रीन लास्ट नाइट, दे हिट प्रीटी गुड सिक्सर टुवर्ड्स द एंड एंड मैच. एंड बाय द वे, अरहम इज वेयरिंग द सीट बेल्ट एंड नॉट पोजिंग टुडे, दैट इज ग्रेट. नहीं तो उमेर आप मुझे अंकल बोल रहे हैं, क्या हो गया रहा है भाई? मैं बड़ा सेंसिटिव हो गया हूँ अंकल के हवाले से. वैसे भी टीवी पे मैं आजकल आ रहा हूँ, हर कोई मुझे कह रहा है कि यार बहुत बूढ़े लगने लगे हो यार तुम, तो अचानक उम्र रसीदा लगने लगे हो. तो मैं बहुत सेंसिटिव हो गया हूँ उस चीज के हवाले से. हकीकत है, हमें पता है जी उम्र है जाहिर है, लेकिन फिर भी जरा इन चीज़ें रियालिटीज को एक्सेप्ट करने में, कबूल करने में तकलीफ तो होती है ना. मोहम्मद अली रऊफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम स्टेबलर्स, थैंक यू. तो फैल जान कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई, अदील अंकल फ्रॉम दानियाल जान, खुशहाल कुशल जान एंड मिशाल जान, वी वन अंकल ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच. जान फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया. वकार अहमद साहब ने तस्वीरें भेजी हैं मनोड़ा की. इसके अलावा खदीजा जीशान, नहीं शाहान खान का मैसेज आया है, आसिफ अली एंड शुएब मलिक ने हमें बचा लिया. चलें जी ठीक हो गया. एंड देन उमेर बाबर कहते हैं आज भी बहुत ह्यूमिड थी सुबह. अरे हमें पता ही नहीं सुबह का यार ह्यूमिड का क्या सीन चल रहा है. बाकी अभी तो वैसे ह्यूमिडिटी कम हुई है यार, इस हफ्ते के आगाज में ह्यूमिडिटी काफी कम थी, 52-53 पे आ गई थी, विच इज इन बैड. बासित यूनुस कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है, सारे चले हुए कारतूस ही काम आ रहे हैं. नहीं चले हुए कारतूस तो चले कह सकते हैं आप, कुछ तो मिस फायरिंग कारतूस थे, यानी वो कारतूस चले ही नहीं थे लेकिन वो काम आ गए, तो ये चीज अच्छा हो गया जी. बिल्कुल अदील अंकल, पाकिस्तान जीत गया. ओके हिबा और मुस्तफा का मैसेज आया, वी आर गोइंग टू स्कूल, दैट इज गुड, एवरीवन शुड गो टू स्कूल, अच्छी बात है. अताउर रहमान साहब कहते हैं कांग्रेचुलेशंस फॉर द ग्रेट विन, और हाउ डू यू फील व्हाइल डूइंग द शो विद अहमद शहजाद. आई मीन इट्स फाइन, इट्स ऑलवेज गुड टू बी सिटिंग रादर देन जस्ट बीइंग एंथुसियास्ट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट. इज ऑलवेज गुड टू हैव अ क्रिकेटर ऑन द पैनल दैट एक्चुअली गिव्स यू के ग्राउंड में. आप उनके पर्सपेक्टिव और ओपिनियन से अग्री करें या ना करें, लेकिन एक्चुअल क्रिकेट खेलने की, इंटरनेशनल हाईएस्ट लेवल की क्रिकेट खेलने की फील क्या होती है, ये तो ये ज्यादा बेहतर जानते हैं, इसलिए दे ऑल डिजर्व अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. ऑलराइट आदिल अंकल, पाकिस्तान हैज फिक्स्ड न्यूजीलैंड सिक्योरिटी इशूज. अहमर का मैसेज तो नहीं आया, अहमर के बच्चे का मैसेज आया होगा ये, लेकिन नाम उन्होंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं. महनाज नवीद भाई, बहुत मुबारक को आपको और हम सबको, अल्हम्दुलिल्लाह. आप ये बताएं, जब कराची की सर्दी पीक पर होती है तो आप रनिंग सुबह करते हैं, बिकॉज सर्दी में फजर के वक्त अंधेरा होता है. नहीं, सर्दी में फजर के वक्त अंधेरा होता है, फजर के वक्त तो जनरली अंधेरा ही होता है, वो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो. हाँ, टाइम जो आप बता रही हैं, नहीं, मेरा तो टाइम यही है, और इसके अलावा बल्कि मैं तो आई लुक फॉरवर्ड टू विंटरी मॉर्निंग, जहाँ पे लोग कहते हैं हमें उठा नहीं जाता, ये होता है, रजाई में तुपक के बैठे हुए होते हैं. तो मैं तो जी बड़े बिल्कुल अंधेरे जाता हूँ, और बल्कि अजानें शुरू होती हैं उसके बाद, मेरे पार्क में पहुँचने के बाद. और अब उसमें जो सीन है वो ये है कि तैयारी के साथ जाएं, जैकेट शैकेट पहन के. कभी कभार तो कराची में दस्तानों की भी ज़रूरत पड़ जाती है, अक्सर इतनी सर्दी अभी पिछले कुछ सालों में पड़ी है. सो मैं तो बड़ा इन्जॉय करता हूँ इसको, दैट्स द आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड टू दैट. तभी मैं हर एक को इनकरेज करता हूँ, दिस इज द बेस्ट टाइम, अगर आपको फिजिकली एक्टिव होना है, दिस इज दी बेस्ट टाइम. और फरूख शाह साहब कहते हैं, अदील मियां आपको और आपके सुनने वालों को अहमद की इम्तिहानात में कामयाबी मुबारक हो. सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा. और इसके अलावा दिशान बेग साहब ने मुबारकबाद दी है अहमद को, बहुत खुश था यार वो, मैंने ट्वीट किया, वो कह रहा है मुझे तो आपने सेलिब्रिटी बना दिया. मैंने कहा यार यू डिजर्व इट यार. ओके जी, ग्रेट. इरफान अहमद साहब कहते हैं, खेत अब्दुल्ला तहरीम एंड मिनाहिल विश यू वेरी गुड मॉर्निंग एज दे आर लिसनिंग टू योर शो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. वेलकम बैक खेत, वेलकम बैक, होप यू गाइस आर डूइंग फाइन. And Rizwan Sheikh कहते हैं, what was the short selection of Imad Wasim? Afghanistan will be a tough opponent. Afghanistan will be a tough opponent, Rizwan, इसमें कोई शक नहीं है. और दे बैटिंग हो या उनकी बॉलिंग हो, it is firing really well. अच्छे परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं. और आज भी उनका मैच नहीं, आज उनका मैच नहीं है, आज तो बांग्लादेश इंग्लैंड, आज बांग्लादेश की आज गेम खत्म हो सकती है टूर्नामेंट में. लेट्स सी क्या होता है उनका सिलसिला, मुश्किल मैच उनका आ गया है. सो चैलेंज ग्रेट, अभी यहाँ पे हम रुकते हैं, बिकॉज मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ने हैं, और मिलूंगा आपसे मैं इस ब्रेक के बाद. मैसेजेस आप लोगों के और भी हैं, बट आई विल हैव टू स्टॉप हियर फॉर नाउ. अभी के लिए फिलहाल हम रुकते हैं, थोड़ी देर में एक बार फिर से मैसेजेस आप लोगों के शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक. विल कैच योर राइट आफ्टर दिस, डोंट गो एनीवेयर. Welcome back guys, ek baar fir se aapko khush aamdeed kehte hain. This is the Sunrise Show with me, Adil, and yeah, thank you. Farhan, acha ji aapne tasveer bheji hai Hussain as acha inka koi fancy dress show ya school mein koi play wagaira ho raha hai. Mad Hatter character, zabardast ji, great. Wishing him all the very best. Mohammed Ahmed, thank you for sharing the picture from Chicago. Dr. Sheila kehti hai, congratulations to all. That is great. And Maha Masad, just dropped my kids to school listening to you, to our favorite 107.4. Lahore is so pleasant these days. Adil bhai, you rock. Making mornings even more pleasant. Thank you so much, dear. Bahut shukriya, Maria Masad. Khush rahiye. Iske ilawa, Rishad Imam sahab ho gaya. World Cup na hua, khandan ki shaadi ho gayi. Har taraf se ranjishon aur naraziyan samne aana shuru ho gayi hain. Sir, sabko time mila hai, sabko time mila hai. Zabardast. Iske ilawa, उमेर बाबर कहते हैं, 50 matches, 50 chances, one powerful inning, more than 50 matches to come. बस भाई क्या बोलें, इस वक्त तो जो जिता रहा है पाकिस्तान को, बस जिताता ही रहे, हम तो यही कहेंगे. जी, इसके अलावा पीर जहीर साहब कहते हैं, थैंक यू अदील अंकल. सर आप भी बोल दें अंकल, सब बोल दें अंकल. शाइन दाइड, थैंक यू सो मच. इसके रेहान उमर कहते हैं, अदील अजर, यू आर ऑन लूजिंग स्ट्रीक. Green shirt beat Indian cricket and now Haris Rauf, AK Patkhu make it to the Pakistan. हाँ, जैसे कि आपने तो बड़ा predict किया होता ना, Haris Rauf छा जाएगा. यानी seriously speaking यार, ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं ना, फलसफी सामने आ रहे हैं, जैसे पता नहीं उनको बड़ी उम्मीदें थी. यानी Haris Rauf की criticism पे उन्होंने मेरे खिलाफ मेरे पुतले जलाए थे उन्होंने, इस तरह का सीन था भाई. सभी मुत्तफिक अले हो गए, कितनी कौम थी पाकिस्तान की जो आसिफ अली की टीम में सिलेक्शन को जो है वो सपोर्ट कर रही थी यार. खुदा का खौफ करें यार, सीरियसली. चलें जी, ओके, आगे बढ़ते हैं. एंड देन मुबीन अहमद कहते हैं, अदील अंकल, हमारा नेक्स्ट मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट है, क्या कहते हैं आप? इंशाल्लाह जीतेंगे मैच, क्या आपको क्या लग रहा है, अफगानिस्तान से हारना है या पाकिस्तान को? नहीं नहीं यार, इंशाल्लाह जीतेंगे भाई. अदील अंकल, गोइंग टू स्कूल, व्हाट अ लास्ट मोमेंट विन, व्हाट अ लास्ट मोमेंट विन. या एब्सोल्युटली शाइन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड अदनान मसूद कहते हैं सीम्स लाइक योर सॉफ्टवेयर हैज बीन अपडेटेड एज वेल. इफ्तिखार चाचू टू हैज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस. मेरा सॉफ्टवेयर क्या अपडेट होगा भाई, ये पाकिस्तान के लिए मैच जिताते रहे. मैं फिर वही बात करूँ, मैं कोई जाती अनाद इनके साथ थोड़ी है. एनी में चले जी, आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. और जाहिर तमाम अखबार में आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि बिलाखिर ऐसा लग रहा है कि ये जो डी जी आई एस आई वाला मामला पाकिस्तान में एक जबरदस्त का जबरदस्ती का एक पोलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ था वो अपने इख्तिताम की जानिब पहुंच रहा है. जंग का लिखना है, जनरल नदीम आई एस आई चीफ नोटिफिकेशन जारी. वज़ारत दिफा की समरी में नामजद तमाम अफसरों ने वज़ीर आज़म अच्छा तमाम अफसरों के वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू किए और पीएमओ के ऑफिस के तर्जुमान का ये कहना है. ठीक हो गया जी. इसके अलावा डॉन का भी ये लिखना है, स्टैंड ऑफ ऑन आई एस आई चीफ एंड अंजुम नेम्ड न्यू स्पाई मास्टर. ठीक है जी, तो एक तो ये खबर आ गई. दूसरी खबर जो है वो आई है अबाउट सऊदी अरेबिया. सऊदी गवर्नमेंट रिवाइव $3 billion सपोर्ट टू पाकिस्तान. और इसमें बेसिकली तकरीबन $1.5 billion पाकिस्तान के अकाउंट में डाल देंगे ये पैसे. ठीक है, जैसे पहले भी इन लोगों ने डाले होते, याद है पर उन्होंने पैसे वापस मांग लिए थे. अब ये ऐसे हवाई पैसे, इन पैसों पे ना इतना इन पे इनसार ना किया करें. कभी इनका मूड अच्छा होगा MBS का पैसे दे देगा, फिर इसका मूड अच्छा नहीं होगा. अल्लाह ताला हमें इन मुश्किलात से, पाकिस्तान को परमानेंटली बाहर निकाले. बड़ा हमने अपने पैसे ज़ाया किए हैं अपनी गलत पॉलिसीज़ की बुनियाद पर, अपनी एक्सचेंज रेट्स को फेक मैनेज करने की बुनियाद पर. लेकिन बाहर हाल चलें से आगे बढ़ते हैं. तो ये तो अच्छी खबर आ गई है. इसका पॉजिटिव, दोनों खबरों का पॉजिटिव इम्पैक्ट आज मार्केट में हो सकता है. बाय द वे कि मार्केट ज़रा क्लू लेस और डायरेक्शन लेस चल रही है जब से इस हफ्ते का आगाज़ हुआ है. बट आई थिंक दीज कुड बी द टू ट्रिगर्स दैट कुड ब्रिंग द मार्केट अप. लेट्स सी क्या होता है. शेख रशीद साहब ने भी जो है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहते हैं हुकूमत का TLP को रियायत ना देने का फैसला फ्रांसीसी सफीर की बेदखली के सिवा तमाम मसाइल पर इत्तेफाक है. वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास, आर्मी चीफ और दीगर की शिरकत सफारत खाने को बंद या अमले को निकालने की पोजीशन में नहीं. तयशुदा उमूर पर अमल ना होने पर लॉन्ग मार्च जारी रहेगा. TLP का ये कहना है, फैजाबाद जाने वाले 131 रास्तों पर दोबारा कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं. मेरे ख्याल से अगर मैं गलती पर ना हूं, इस वक्त फैजाबाद खुला हुआ है. हमारे ग्रुप में जो है सुबह ये डिस्कशन हो रहा था इस्लामाबाद की. बहरहाल अगर आपके पास जो है कोई अपडेट हो तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. ओके जी, देन वी हैव गॉट जी हां बिल्कुल पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच की खबर जो है वो आज प्रोमिनेंस के साथ अखबार में शामिल हुई है. ज़्यादा तफसील से इस ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो मैच के स्कोर कार्ड पर नजर डालेंगे. कोशिश करेंगे कल के दोनों मैचेस के हवाले से जो है वो बात की जाए. इसके अलावा डॉन का ये लिखना है कि जिरगा डिसीशन कैन नॉट बाईपास इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस. सुप्रीम कोर्ट का जो है वो ये कहना है. और ठीक हो गया जी. और देन एनीथिंग एल्स दैट वी हैव गॉट, डॉलर 175 का हो गया, सोना 1,32,000 की बुलंद तरीन सतह पर आ गया है. इसके अलावा मशकूक ट्रांजैक्शन केस, जरदारी ने फर्द जुर्म आयद करने का फैसला चैलेंज कर दिया है. और अमेरिका के जो साबिक अफगानिस्तान के लिए खसूसी नुमाइंदे होते थे जलमे खलीलजाद, उन्होंने अमेरिकी मीडिया को जो है ना कल इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी कुछ भी होता, अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में जंग हार ही रहा था. सो उन्होंने कहा कि जी ये जो तालिबान का जो राइस था, इसने इस पूरे मामले को एक्सपेडाइट कर दिया, अदरवाइज इन अमेरिका वॉज नॉट विनिंग द वॉर. एंड आई थिंक बहुत ही सर्कमस्पेक्ट और बहुत ही दुरुस्त बात जो है वो जलमे खलीलजाद ने यहाँ पर की है. नस्ला टावर ज़ाहिर अखबार के सफाई अव्वल पर मौजूद है. पिछले चंद दिनों से नस्ला टावर की बिजली, पानी और गैस मुनक़ता, फ्लैट खाली नहीं करेंगे मकीनों का ये कहना है. SSGC और वाटर बोर्ड की टीमों को शदीद मुज़ाहमत का सामना रहा. खवातीन रो रो कर कनेक्शन मुनक़ता ना करने के लिए मन्नत समाजत करती रहीं. यार वैसे बड़ा जुल्म हो रहा है यार, ये नस्ला टावर वाली जो गेम हो रही है ना यार यानी समझ में नहीं आ रहा कुछ यार, कि ये क्या देख रहे हैं यार हम पाकिस्तान में, क्या देख रहे हैं यार. एनीवे जी आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जाहिर समाप्त हो रही है, वही जजेस के रिमार्क्स हमें सुनने में आते रहते हैं. एयरपोर्ट्स की जमीनों पर शादी हॉल्स खत्म करें, ग्रीन बेल्ट से ग्रिड स्टेशन हटाने का हुक्म. किसी मौजूद मुल्क में ऐसा नहीं होता. रात को जहां ने लोगों को भेड़ बकरियां समझा हुआ है, एयरपोर्ट को खंडर बना दिया, वहां भी शादी हॉल बना दें. चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, DG सिविल एविएशन पर भरम हुए हैं. और ठीक हो गया, IMF से मुआहदा जल्द, पाकिस्तान तमाम शराइत मानने पर तैयार. जराए का ये कहना है, जराए का ये कहना है, इसलिए जरा आप अभी इतना इस पर यकीन ना करें. लेट्स सी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या अग्रीमेंट कर आती है. अभी लिए चलते हैं आपको हम टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानेब और मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वाह क्या बात है, दैट वाज कोका-कोला स्पॉन्सर्ड सॉन्ग आतिफ असलम की आवाज आप सुन रहे थे. देयर वाज सम हिप हॉप गोइंग ऑन इन द स्टार्ट. आई डोंट नो हु दोज वर बट प्रीटी कूल ऑसम. क्या स्केल पे गाता है यार ये बंदा, बहुत आला ग्रेट. आप लोग के मैसेजेस बहुत सारे मौजूद हैं मेरे पास यहाँ पे, उनको भी थोड़ी देर में हम शामिल करते हैं. और आसिया थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी. गुड मॉर्निंग आपको भी, और आप जिस मोहब्बत से बेटा कहती हैं बड़ा खूबसूरत लगता है रोजाना सुबह. थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिए. अच्छा सीन क्या हो गया, सीन ये हो गया कि जल्दी से आप लोगों को खेलों के बारे से पहले जल्दी से आपको ना स्कोर कार्ड बताते हैं, जिस तरह हम आमतौर से इस टाइम पे कर रहे होते हैं. पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड शारजा में जो ये मैच खेला गया वो इस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2021 का जो ये मैच, ये जो गलत टाइम पे पेजेस रिफ्रेश होते हैं ना बहुत गुस्सा आता है इस पर सीरियसली स्पीकिंग, बट चलो कोई बात नहीं. हाँ जी, सो या नाउ लेट्स कम, दिस वाज द मैच नंबर 19. देयर सिलसिला कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से टॉस जीता और एक बार फिर से पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. और वेल स्टार्ट निस्बतन ठीक रहा, पाकिस्तान ने दबा के रखा हुआ था, दबोच के रखा हुआ न्यूजीलैंड को किसी भी मौके पे मैच में, सिवाय एक टाइम पे जिस वक्त डेवॉन कॉनवे ने कुछ अपना हाथ खोलने की कोशिश की थी, उसके अलावा कहीं भी मैच पाकिस्तान के जो है ना वो कंट्रोल से निकलता हुआ नजर आ नहीं रहा था. बहुत टाइट बॉलिंग की थी शारजा की, विकेट वी ऑलवेज नो is on the slower side, थोड़ी सी डैम्प विकेट होती है, इस पर रन बनाना जो है वो आसान नहीं होता. और मैं ये कल शेयर भी गालबन आप लोगों से कर रहा था कि the average first inning total in Sharjah ground is just 141. Now modern cricket mein 141 average first inning total in T20 match, we know that is quite low. Aur kal ka match jo hai was testament to that, even though New Zealand ki team hum jante hain with the players like Martin Guptill, Williamson, Conway aur ye Nisham, ये अच्छे काफी हार्ड हिटिंग जाहिर टीम है, लेकिन उसको भी पाकिस्तान ने 135 में मैं देखें, हरगिज ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ विकेट ने अपना रोल प्ले किया, पाकिस्तानी ने बहुत टाइट बॉलिंग भी की एंड आई थिंक एवरीवन वाज बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान. तहम पाकिस्तान की बॉलिंग की जो एकिलिस हील्स अभी भी साबित हो रहे हैं वो हसन अली है. हसन अली इज प्रूविंग एक्सपेंसिव, पिछले मैच में भी उन्होंने 40 से ऊपर रन दिए थे, कल सिर्फ 3 ओवर हसन ने करवाए जिसमें वो 26 रन दिए और विकेट लेस रहे. लेकिन ऑफकोर्स कल द पिक ऑफ पाकिस्तानी बॉलर्स वॉज हारिस रऊफ. हारिस रऊफ का जो सबसे बड़ी तब्दीली देखने में आई है वर्ल्ड कप से पहले और वर्ल्ड कप के दौरान वो ये है दैट ही इज मिक्सिंग हिज डिलीवरीज वेरी वेल. इससे पहले हारिस रऊफ वाज ऑल अबाउट पेस, बॉल को ला के पटखना विकेट पे और उस पर उनको शॉट पड़ रहे होते थे, लाइन का भी ख्याल नहीं, लेंथ का भी ख्याल नहीं. लेकिन अब ये वन ऑन फिलेंडर इफेक्ट है, ये कौन सा इफेक्ट है कि हारिस रऊफ जो है वो जिस तरह अपनी फिंगर्स को रोल करके जिस तरह डिसगाइज कर रहे हैं अपनी स्लोवर डिलीवरी को, दैट इज प्रूविंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट. आई थिंक दो उन्होंने बोल्ड किए और दो जो है वो उन्होंने कैच आउट करवाए, और वो कैच आउट भी थे वो दोज वर स्लोवर डिलीवरी. सो बहरहाल इमाद वसीम माइजर एज ऑलवेज अपने 4 ओवर में 24 रन दिए एंड शाहीन शाह आफरीदी 1 विकेट उनको मिली लेकिन सिर्फ 21 रन दिए. और मार्टिन गप्टिल को पूरा का पूरा पहला ओवर जो है ना वो मेडन पिलाया वहां पे. यानी अब हुआ क्या है, शाहीन आफरीदी के सामने जो है वो दुनिया के बैट्समैन इस वक्त थोड़ा सा मोहतात हो गए हैं. उनके पहला ओवर खास तौर से दे हैव डिसाइडेड दैट इस तरह जसप्रीत बुमराह के साथ दे हैव डिसाइडेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी चांस टू हिम, और कोई मौका जो है ना वो इसको देंगे नहीं विकेट लेने का. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि शाहीन आफरीदी अगर नहीं भी ले पा रहे थे विकेट तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान जो है हमारे खिलाड़ी विकेट निकाल रहे थे या फिर कम से कम रन रोकने में कामयाब हुए थे. शादाब खान ने 3 ओवर्स में 19 रन दिए और मोहम्मद हफीज के 2 ओवर्स में 16 रन आए, उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया. जवाब में पाकिस्तान का आगाज मोहतात आगाज था. पाकिस्तान आई थिंक वन हैज टू से बहुत कुछ वी लेफ्ट इट फॉर दी एंड, और आखिर में थोड़ा सा हलक में ये चीज आ भी गई थी. मोहम्मद रिजवान एक तरफ से जो है बैटिंग बहरहाल करते रहे, 34 गेंदों पर 33 रन बनाए, नॉट द नॉर्मली फ्लुएंट इनिंग जो रिजवान से हम एक्सपेक्ट करते हैं. बाबर आजम फेल्ड यस्टरडे, किम साउदी ने उनकी विकेट हासिल की. फखर जमान ने 17 गेंदों पे 11 रन बनाए जिसमें एक छक्का भी शामिल था. यू कैन इमेजिन हाउ मेनी डॉट बॉल्स दैट ही प्लेड. फखर इज लुकिंग ऑफ कलर थोड़े से, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह he will be in form in no doubt in no time. हफीज ने आते ही पहली बॉल पे छक्का मारा और बेछिक्का मारा और बेसिकली यही उन्होंने किया, 6 बॉलों पे 11 रन उन्होंने बनाए. और फिर उसके बाद इमाद वसीम कुछ इधर उधर अजीब फैंसी मैचेस खेलना के इनिंग खेलना चाह रहे थे, वल्ला आलम व्हाट वाज गोइंग थ्रू हिज माइंड वी डोंट नो. बट देन शुएब मलिक और आसिफ अली के दरमियान 48 रन की है पार्टनरशिप. आसिफ अली ने खास तौर से 3 छक्के मारे जिसमें 2 टिम साउदी और 1 ट्रेंट बोल्ट को उन्होंने मारा, एक बाउंड्री भी शामिल की उनकी इस इनिंग में. 12 गेंदों पर 27 रन आसिफ ने बनाया और शुएब मलिक ने भरपूर साथ दिया उनका, सही मौकों पर उन्होंने बाउंड्रीज हासिल की, 20 गेंदों पर 26 रन बनाए. सो पाकिस्तान ने इस टोटल को 5 विकेटों के नुकसान पे 18.4 ओवर्स में पूरा किया. मिच सेंटनर के 4 ओवर्स में 33 रन आए, 1 विकेट उन्होंने हासिल की. टिम साउदी के 4 ओवर में 25 रन, ट्रेंट बोल्ट के 3.4 ओवर्स में 29 रन, जिमी नीशम 3 ओवर्स में 18 और इश सोदी के 4 ओवर में 28 रन आए. हारिस रऊफ ऑफ कोर्स फॉर हिज परफॉर्मेंस वाज गिवन मैन ऑफ द मैच. सो अभी अजीबोगरीब सी इस टूर्नामेंट की जो है ना वो शेड्यूलिंग हुई भी है. पाकिस्तान अपने 2 मैचेस खेल चुका है, बाकी कोई भी टीम अपने 1 मैच से ज्यादा नहीं खेली है. इनफैक्ट पाकिस्तान अपने 3 मैचेस खेल चुका होगा तब भी इंडिया ने अपना पहला मैच ही खेला हुआ होगा. सो वल्ला आलम, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. चलें जी, तो पाकिस्तान इज ऑन टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल, 2 विंस आउट ऑफ 2, देन कम अफगानिस्तान. और फिर उसके अलावा चलें कल दूसरे मैच के हवाले से बात करते हैं. कल मुकाबला हुआ साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान और कहना ये पड़ेगा दैट इट लुक्स लाइक दैट दिस वर्ल्ड कप सीम टू बी ओवर फॉर द डिफेंडिंग चैंपियन. काफी सीनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल अपनी ये टीम लेकर आए थे साउथ अफ्रीका के, इस वर्ल्ड कप में और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इनके ज्यादा सीनियर्स जो है वो खास तरह कारकर्दगी दिखा नहीं पाए. पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 143 रन बना सकी. दुबई में ये मैच हुआ था, हाईएस्ट रन गेटर रहे उनके इवन लुइस, उन्होंने 35 गेंदों पे 56 रन बनाए जिसमें 6 छक्के शामिल थे. लिंडल सिमंड ने 35 गेंदों पे 16 रन बनाए. सिमंस की मैं इनिंग देख रहा था, उनको नहीं पता चल रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, नहीं बैटिंग कर पा रहे ठीक से. किरण पोलार्ड ने 20 गेंदों पे 26 रन बनाए, यही खातिर ख्वाह स्कोरिंग थी. अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनकी 2 विकेटें हासिल करी की शिव महाराज ने, लेकिन पिक ऑफ द बॉलर रहे एनरिक नोकिया. नोकिया के विकेटें तो उन्होंने एक दिन, लेकिन 4 ओवर्स में सिर्फ 14 रन दिए. खासतौर से सिमंस को जो है उन्होंने काफी बॉलें पिलाई. जवाब में टेंडे बेबुमा जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद देयर वाज अ ग्रेट पार्टनरशिप बिटवीन रीजा हेंड्रिक्स एंड रासी फैंडर ड्यूसन. रासी फैंडर ड्यूसन और एडन मार्करम ने जो है इस इनिंग का इख्तिताम किया. इनफैक्ट एडन मार्करम ने 26 गेंदों पे 51 रन बनाए, 4 छक्के और 2 चौके इसमें शामिल थे. सो बासानी इस टोटल को 18.2 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर इन्होंने किया पूरा. सो साउथ अफ्रीका ने अपना खाता है खोला और अब दे आर इक्वल ऑन पॉइंट्स विद ऑस्ट्रेलिया, लेकिन है चौथी पोजीशन पे. इंग्लैंड टॉप पर है, श्रीलंका दूसरे नंबर पर है और आज इस ग्रुप का जो है एक और उम्मीद करते हैं अच्छा मैच होगा. बांग्लादेश का मुकाबला होना है इंग्लैंड के साथ. इंग्लैंड इस मैच को जीत के अपने क्रेडेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है फॉर द सेमी फाइनल. एंड या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आज जो दूसरा मैच होगा वो गालबन इस टूर्नामेंट का अगर थियोरेटिकली देखा जाए, इवन दो आई एम श्योर कि दिस कुड टर्न आउट टू बी अ वेरी क्लोज मैच, लेकिन नामीबिया विल बी टेकिंग ऑन स्कॉटलैंड. 2 क्वालिफाइड टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबल होंगी. ये हमारा वाला ग्रुप है और जाहिर इनमें से कोई एक टीम कामयाबी हासिल करती है, आई थिंक नामीबिया, जिस तरह डेविड वीजा जिस फॉर्म में खेल रहे हैं. आई नो दे आर टू डिपेंडेंट ऑन डेविड वीजा, लेकिन वेल यू नेवर नो, दे कैन डिफीट स्कॉटलैंड एंड दैट वुड बी सॉर्ट ऑफ अ मिनी अपसेट, आई मीन इट इज फॉर मी. बहरहाल चलें जी, अभी ऐसा लिए करते हैं आपको हम लिए चलते. अच्छा, हमें बात करनी है, आप सोच रहे होंगे मैंने अभी तक उस पर बात नहीं की क्विंटन डीकॉक वाले एपिसोड के ऊपर, सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ बिट. ठीक है, अभी लेकिन हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे उस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो विद अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, काफी सारे मैसेजेस आप लोग के आए हैं. जाहिर जी मुबारकबाद तो अपनी जगह आप लोगों ने दी हुई है, एक्साइटमेंट भी आप लोगों की नजर आ रही है, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त वो ये कि मेरी टाइमलाइन जो है ना वो इस पर काफी ज्यादा भरी हुई है. कल लाइव टेलीविजन पे होने वाले इस फटे की वजह से जो कि डॉक्टर नुमान नियाज और शुएब अख्तर के अगेंस्ट, तो मैं देख के रहा हूँ कि लोगों का जो झुकाव है वो शुएब अख्तर की तरफ जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है. अच्छा जी, इन दोनों के दरमियान किसी चीज के ऊपर कोई बातचीत हुई है? और मैंने देखे पूरा क्लिप तो ये देखा नहीं. और एक तो ये कि मैं हमेशा आई थिंक वो डॉक्टर नुमान जाहिर है पिछले कई सालों से पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स में बुरा जमान है और जाते भी हैं और आ भी जाते हैं. ही इज पोलिटिकली लुक्स लाइक दैट इज पोलिटिकली वेरी कनेक्टेड, बिकॉज ये इनको हमने पोडियम पे खड़े होकर मियाँ साहब कसीदे पढ़ते हुए भी देखा है. इसके अलावा फिर जब इमरान खान साहब आते हैं तो वो इमरान खान साहब ग्रेटेस्ट प्लेयर और ये वो फलाना वो वाला सीन चल जाता है. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही इज देयर, ही इज देयर इन दैट स्लॉट, और वो इस मकाम पर मौजूद है. और इनको ये ना एल्फी लगा के वहाँ चिपके हुए, तो उनको हिलाना भी लगता है कि मुमकिन है नहीं. बहरहाल जी, गेस्ट प्रेस बुलाते हैं बाहर से, आ जाते हैं वो लोग, अच्छे पैसे भी उनको ज़ाहिर देते होंगे, अपना ये प्रोग्राम करते हैं. बट आई डोंट नो मैन, सीरियसली इसमें तो पहले अपनी साउंड क्वालिटी वगैरह इंप्रूव करें. इट स्टिल लुक्स लाइक दैट प्रोग्राम इज फ्रॉम सम 1990 समथिंग, बट दैट्स द इशू विद पाकिस्तान टेलीविजन अनफॉर्चुनेटली. सुनने में आ रहा था काफी अर्से पहले कि इसको एचडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. अच्छा बस बहरहाल ये हुआ ये कि लाइव टीवी में इंदर मिंदो के दरमियान कुछ शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का कुछ डिस्कशन चल रहा था लाहौर कलंदर के हवाले से, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से. जाहिर है ये इस मामलात की वजह से चीजें अचानक ट्रिगर हो गई, वरना इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई मसला चल रहा होगा बिफोर ड्यूरिंग द शो, एंड सडनली दिस गॉट ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. और वहां पे उन्होंने कहा कि जी आप शो से निकल जाएं, मेरे वापस चले जाएं, शो से चले जाएं, लेट्स गो. वो उस पे उन्होंने कहा कि जी शुएब अख्तर ने बोला, उसने फिर सवाल उसने जो है चेंज करके वो सना मीर की तरफ आ गए, जिस पे शुएब अख्तर ने कहा एक्सक्यूज मी, वेट एक्सक्यूज मी. अरे शुएब अख्तर एक ईगोस्टिक आदमी यार, यानी दो ईगोस का क्लैश हुआ है लाइव टीवी पे. इंतहाई शदीद ईगोस्टिक किस्म की दो शख्सियात बैठी हुई हैं जिनका आपस में ये क्लैश हुआ है, और फिर उस पर उन्होंने जो है डॉक्टर नुमान ने ब्रेक ले लिया. अच्छा फिर सुना है वापस आए, और वापस आकर उन्होंने बोला कि जी तो हमारे आपस में मजाक चल रहा था, ये वो फलाना फलाना. लेकिन फिर शोएब अख्तर ने शो के बाद अपनी एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी ये कोई प्लान नहीं था, और ये मेरे साथ गलत हुआ है, और मैं सुपर स्टार और ये वो फलाना, और उसको इस तरह लाइव टीवी में ट्रीट करना, दैट इज नॉट गुड. सो बहरहाल अब ये मामला कहाँ जाएगा, किधर रुकेगा, दैट रिमेंस टू बी सीन. आई डोंट थिंक दिस वॉज समथिंग मेड अप. मुझे नहीं लगता कि ये कोई चीज़ थी ऐसी जगह मेडअप की गई, ये स्पर ऑफ द मोमेंट हुआ है. आई रिपीट अगेन, जो मुझे देखने में अंदाजा हुआ है वो ये कि ये क्लैश ऑफ द ईगोस था, दो अनाओं का आपस में टकराव था, और जिसका नतीजा आपने ये देखा. बहरहाल जी बैरून मुल्क के गेस्ट, फॉरेन गेस्ट, बैट डेविड गावर सिटिंग देयर, सर विव रिचर्ड्स सिटिंग देयर, उनके सामने ये चीज़ें करना ज़ाहिर है जेब नहीं देता, जो भी हो सिलसिला. लेकिन आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान टेलीविजन की मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन को भी देखना पड़ेगा यार, वॉट आर वी डूइंग, लाइक व्हाट्स द प्लान, व्हाट इज पाकिस्तान पीटीवी स्पोर्ट्स अप टू. आई मीन सच अ रिसोर्सफुल प्लेस, इतनी रिसोर्सफुल जगह है, अनलिमिटेड बजट, सरकारी इदारे तो आपको पता ना उनको तो लॉस बनाने का या पैसे बनाने का कोई इतनी चिंता भी नहीं होती है, बस चलाओ यार काम. लेकिन उसके बावजूद वी सी सच एवरेज प्रोडक्शन एंड स्टफ एंड ऑल, समझ में नहीं आता व्हाट इज द लाइक व्हाट इज द प्लान अगले तीन साल, व्हाट इज द फाइव ईयर प्लान, बिकॉज इट्स आवर टैक्स मनी ना जिससे ये चल रहा होता है. सो हमारा अब तो प्रॉफिट तो शायद उन्होंने कहते हैं, दावा ये करते हैं उन्होंने इस साल प्रॉफिट बना लिया, बिकॉज जब तक ऑडिटर अकाउंट्स आपके सामने आएंगे नहीं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख ना लें, तो आप तब तक कैसे ये बात मान लेंगे कि यार वाकई पाकिस्तान टेलीविजन ने अरबों रुपए का वो मुनाफा बनाया है जो कि वो दावा कर रहे हैं. सो या दैट रिमेंस टू बी सीन नाउ कि आखिर इसमें करना क्या है इनको, क्या यही लेकर जाएंगे हजरत आगे जो कि पिछले शायद 10-12 साल से यहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं. सो वल्ला आलम क्या सीन है, बट ये है सिचुएशन यार, जिनको नहीं पता था नाउ दे आर अपडेटेड. बाकी आप सब आई थिंक वायरल हो गए, हर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना वो आपको ये चीज नजर आ रही होगी. ओके जी ग्रेट, जल्दी से बाकी और मैसेज आप लोग नॉलेज करता चलूं मैं आप लोगों के. नुमान खालिद साहब का मैसेज आया है, शौकत तरीन साहब ने भी सऊदी अरेबिया के हवाले, जी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स वगैरह और गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो काफी एक्साइटेड है. सऊदी अरब ने जो है वो बेसिकली हैज डिसाइडेड, शौकत तरीन साहब ने अब से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है दैट द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कहते हैं यस्टरडे इवनिंग द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया इनफॉर्म्ड मी ऑफ द जेनरस जेस्चर ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया टू प्लेस $3 billion विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड अ 1.2 बिलियन डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी टू हेल्प द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ पाकिस्तान. वी थैंक द क्राउन प्रिंस एंड KSA फॉर द काइंड जेस्चर. तो यानी ये अब जो है क्लियर हो गया कि $3 अरब पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास प्लेस हो जाएंगे, और 1.2 बिलियन डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी, यानी कि पाकिस्तान ऑयल खरीद सकता है सऊदी अरेबिया से, और पेमेंट जो है वो बाद में कर दे इसके हवाले से. बट यार ये सऊदी पैसे जो होते हैं ये हवाई पैसे होते हैं, ये आपके अपने पैसे नहीं होते हैं, ये किसी और के पैसे होते हैं, और उनका जब मूड अच्छा नहीं होता, MBS का जिस दिन अच्छा मूड नहीं होगा, किसी बात पे खुश नहीं होगा, उस दिन जो है वो आपसे पैसे वापस मांगने का, जैसे कि इन्होंने पिछले साल जो है हरकत की थी. सो बहरहाल जो भी है, लेट्स होप कि पाकिस्तान को थोड़ा सा लेवरेज इसमें मिलते हैं. IMF के साथ जो पाकिस्तान के सख्त मुजाकरात जो हैं वो चल रहे हैं, इवन दो अखबारात ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत मान ली है. मुझे नहीं पता कि ऐसा है रियलिटी में या नहीं है, लेकिन फिर भी दिस इज अ कम्फर्टिंग न्यूज़, ये अच्छी खबर है इकोनॉमी के हवाले से. बट लेट्स जस्ट होप, वैसे भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का आपको पता, दिस वी आर इनटू द लास्ट ईयर ऑफ आर IMF जो हमारी प्रोग्राम चल रहा है. तो अब हमें देखना ये पड़ेगा कि यार उसके बाद हमें क्या करना है, व्हाट इज आवर प्लान बियॉन्ड दैट एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट दीस थिंग्स. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट डेफिनेटली गुड न्यूज. लेट्स होप दैट मार्केट ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली टू दिस न्यूज एंड दे शुड. Why shouldn't they? By the way, ठीक हो गया जी. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar, and thank you so much for so many messages that you guys have been sending. Jadid Gul कहते हैं, beautiful word match between Amir and Harbhajan Singh. यार कोई beautiful, beautiful नहीं है. पागल पने वाली ये गुफ्तगु चल रही है. अगेन यार ये जब लो आई क्यूज आपस में आके जब बैठते हैं ना तो इस तरह की यानी क्या पागलपना. अच्छा ये आमिर और चले उसका तो बज्जी का बज्जी कहते हैं ना, क्या कहते हैं बज्जी कहते हैं उसको. उनका तो बैंटर आपस में चलता ही है, उनके तो आपस में फटे फटे चलते ही हैं. बट ये आमिर ने बीच में जो है ना वो किए. यार आमिर भाई तू शीशे के घर में रहता है यार, वो तेरा दागदार माजी है, मतलब एहतियात कर यार. घूम फिर के उसको एट द एंड ऑफ द डे आना तुम्हारे मैच फिक्सिंग के ऊपर ही था और कर दिया उसने जलील. तो भाई चुप से बैठे रहो यार, क्या कह सकते हैं. नहीं भाई नहीं करना इनको. एनीवे जी इसके अलावा शाहरुख का मैसेज आया, कहते हैं गुड मॉर्निंग, आई डोंट नो somehow I've been sending messages. नहीं शाहरुख आपके मैसेजेस सारे आ रहे हैं मेरे पास. यार प्रॉब्लम जो है ना वो ये कि मैसेजेस आजकल शो में वैसे ही बहुत आ रहे हैं, तो सुबह जो मैसेजेस पढ़ लेता हूँ ना मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मेरे लिए बहुत मुश्किल है माशाल्लाह टू कीप अप विद दिस. जी कल अरशद घुमरो भी यही शिकवा कर रहे थे, अभी जैसे उनका फिर मैसेज आया, न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी और आपको हारिस और आसिफ की श्योरिटी मिल गई है. भाई जो पाकिस्तान के लिए खेलेगा वो हमारा फेवरेट है, खत्म हो गई भाई, इतनी सी बात है यार. अच्छा जी आज 1 करोड़ एड्स चला दिए आपने. यार 1 करोड़ एड्स का तो मुझे नहीं पता, अल्लाह करे 1 करोड़ के एड्स हमने चला दिए हो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा जी. अच्छा जी इसके अलावा आसिफ हयात कहते हैं, ब्रो ऑयल एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर, व्हाट पाकिस्तान कैन डू विद ईरान टू अवॉइड डिपेंडेंसी और मिडल ईस्टर्न. ओ भाई ईरान से कोई ऑयल थोड़ी खरीद सकता है, ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई है, वो अपना ऑयल इस तरह बेच नहीं सकते हैं. तो इस तरह इसको रहने देते हैं ना, ईरान को फिलहाल जो है ना वो हम अभी साइड पे रखते हैं, उनके पहले उन पे सैंक्शंस खत्म हो जाएं फिर उसके बाद हम देख लेंगे ईरान. अच्छा यार एक बड़ी गलतफहमी, मैं अगले 2 मिनट में जरा मुझे कुछ और बात करनी है, मैं अगले 2 मिनट में मैं गलतफहमी दूर करता चलूं. लोग कहते हैं कि यार हम ईरान से ऑयल, ईरान में इतना सस्ता ऑयल है, हम ईरान से ऑयल क्यों नहीं इंपोर्ट कर लेते. वेनेजुएला में इतना सस्ता ऑयल है, हम वेनेजुएला से ऑयल क्यों नहीं इंपोर्ट कर लेते. ओ भाई यार कम ऑन यार, किस तरह की बात. नंबर वन इत्तेफाक से दोनों मुल्कों पे सैंक्शंस लगी हुई है, ऑयल इंपोर्ट करना जरा मुश्किल काम है. वेनेजुएला से फिर भी थोड़ा बहुत ऑयल आ जाएगा, लेकिन ईरान से आना तो बहुत ही मुश्किल बात है. लेकिन यार अबे वो इस ऑयल को अपनी आवाम के लिए दे रहे हैं. अब वो अगर आपको ऑयल ईरान से लेना है तो ईरान आपके साथ जो सौदे करेगा जाहिर है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में करेगा, वो इंटरनेशनल रेट्स के ऊपर करेगा. वो क्यों आपको सस्ता ऑयल बेचना शुरू कर देगा जब उनको पता है कि पाकिस्तान को ऑयल जो है इंटरनेशनल मार्केट में $86 का मिल रहा है. नहीं लिया के मैं तो $15 का बेचूंगा पाकिस्तान. नहीं यार वो क्यों अपने रेवेन्यू को अंडरकट करेगा. वो कहेगा यार 86 का है, आओ हम आते हैं मिडल ईस्ट मार्केट, जो भी मार्केट से पाकिस्तान बाय करता है जहाँ पे वहाँ पे जी इरेनियन ऑयल के सौदे होंगे वहाँ से आप खरीद लेना. तो प्लीज अपने जहन से ना ये निकाल दें कि अगर किसी मुल्क में अपनी आवाम के लिए तेल सस्ता या पेट्रोल सस्ता किया हुआ है तो इंटरनेशनल मार्केट में भी वो सस्ता तेल बेचने जाएगा. ऐसा नहीं होता यार, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला एक फैक्टर होता है. वाई वुड आई गिव अप ऑन माई इनकम. मैं अगर $85 कमा सकता हूँ तो मैं क्यों $20 का ऑयल बेचूंगा, क्यों बेचूंगा यार. कुछ तो अकल की बात कर लें यार. लोग तपा दिए मेरे ये मैसेज करके लोगों ने पता नहीं. एनीवे मोहम्मद लतीफ कहते हैं, लेट इकोनॉमी फाइंड इट्स वे, यानी कहते हैं लेट्स गेट ओवर विद IMF वंस एंड फॉर ऑल. लतीफ यार ये बातें आप बड़ी प्यारी करते हैं, आप इतनी खूबसूरत बातें की हैं, मेरा दिल बाग बाग हो गया सुन के. IMF से जान छुड़ाना चाहिए, हमारी जिंदगी में ये पहली बार हम नहीं सुन रहे कि हमने IMF से जो है वो जान छुड़ा ली है. पिछले 21 साल में दूसरी दफा, बल्कि मैं कहूँ पिछले 17 साल में दो दफा ऐसा हो चुका है जहाँ पाकिस्तान ने IMF को कहा है तेरी मेहरबानी, प्रोग्राम खत्म, थैंक यू, आपने हमें हेल्प की, अब हमें जो है ना वो आपकी जरूरत नहीं है. मुशर्रफ साहब के टाइम पे जिस वक्त इकोनॉमी काफी ऊपर उड़ रही थी, 2004 में पाकिस्तान ने IMF का एक प्रोग्राम था, आई थिंक इट वॉज कॉल्ड द पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फंड, अगर मुझे नाम सही याद आ रहा है. पाकिस्तान ने उनको प्री पे कर दिया, उन्होंने कहा यार बस खत्म भाई, अब हमें पैसे नहीं चाहिए, इकोनॉमी ठीक हो गई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई इशू नहीं है, अपने पैसे अपने पास रखें, अब हम अपनी इकोनॉमी अपने मुताबिक चलाएंगे. दूसरा नवाज शरीफ साहब के दौर में भी पाकिस्तान ने एक टाइम पे IMF का प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया था, एंड देन वी डिड नॉट गो फॉर, वी सेड नो वी डोंट वांट एनी फर्दर प्रोग्राम. मेरे ख्याल से वो प्रोग्राम भी अपनी पूरी मुद्दत पूरी कर गया था. फिर उसके बाद वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस छोड़ के गए. देखो यार प्रॉब्लम क्या है आपको, देखो सवाल ये यार, मैंने इस पे ना एक अपना YouTube चैनल एक जमाने में बनाया था, उसमें मैंने अपनी पहली वीडियो जो प्लेस की थी ना उस वीडियो का नाम ही यही था, पाकिस्तान इकोनॉमी मसला क्या है, दिस वाज द थिंग. और वो टाइम था जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नई नई आई थी और एक बार फिर से हम IMF की तरफ जाने वाले थे, और मैंने ये सवाल बेसिकली काउंटर करने की कोशिश की थी कि यार ये मसला क्या है, ये हर तो इंडिया का तो मैं नहीं सुनता, बांग्लादेश का तो मैं नहीं सुनता कि IMF के पास पहुंचे हुए, ये हमारे साथ क्या क्या मसला है कि हर थोड़े दिनों में IMF पे पहुंच जाते हैं, फिर नॉक कर रहे हैं, नॉक नॉक कौन है, बल्कि IMF भी नॉक से समझता होगा भाई लगता है फिर पाकिस्तान आ गया यार। ये प्रॉब्लम इज द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यार, ये खैर यू गाइस गो एंड वॉच दैट व्लॉग यार, वो व्लॉग मैं उस वक्त हज से आया था, नया नया बाल भी थोड़े से हैं उस वक्त सर पे, ना गंजा मैं था उस वक्त, मैंने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया था अपना, लेकिन यार वो चैनल आप जरा देखिएगा, वो अच्छी अच्छी डिस्कशन है, वो पता है वो अच्छी वीडियो थी, वो थोड़ा बहुत समझाने की आम फैम जबान में मैंने कोशिश की है, लेकिन देखो यार प्रॉब्लम ये जब तक आप छेड़खानी करेंगे ना अपनी इकोनॉमी के साथ, जब तक आप इसको आर्टिफिशियली मैनेज करने की कोशिश करेंगे ना एक्सचेंज रेट वगैरह को, आप अपने फॉरेक्स रिजर्व को, इन सारी चीज़ों को, फॉरेक्स रिजर्व तो खैर क्या आप करेंगे, लेकिन एक्सचेंज रेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें इस ऑब्सेशन से निकलना पड़ेगा। ये जो हमारे पास करेंसी की फिक्सेशन का एक ऑब्सेशन है ना कि हमने जी अपने दौरे हुकूमत में डॉलर को 100 पे रखा था इतने साल तक, ये देखें जी ये सिलेक्टेड जो है नियाजी इससे ये नहीं हो पा रहा, तो भाई नहीं, ये पागल बने की बात थी है। आपको देखना ये देखें, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, RER को देखें, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 126 पर ले आए थे, पाकिस्तानी करेंसी ओवर वैल्यू हो गई थी, उतनी वैल्यू हमारी करेंसी की थी नहीं जो कि वो $100 पर डॉलर दिखा रही थी। आपको पता है इस वक्त मैं आपको कल का नंबर बताऊं, पाकिस्तान का जो RER है वो कल 96 पर आ गया था, ओके जी, और इसका मतलब ये कि पाकिस्तानी वैल्यू जो है करेंसी जो है इस वक्त अंडर वैल्यू हो चुकी है, यानी जो इस वक्त ₹175 का एक्सचेंज रेट है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द रियल वैल्यू ऑफ PKR, द रियल वैल्यू ऑफ PKR एज आई ऑलवेज से इज अराउंड 165, सो दैट्स द थिंग। सो अगर आप उसको 100 पे ले आएंगे, 100 का मतलब ये कि आपकी करेंसी की वैल्यू जो है RER रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर 100 पर होगा, इसका मतलब ये कि आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो उसकी सही वर्थ रिफ्लेक्ट कर रही है, मार्केट फोर्सेस जो उसकी सप्लाई और डिमांड की वजह से उसकी सही वैल्यू आती है वो आपको नजर आ रही है वहां पे। अगर वो 96 पे आ गई, इसका मतलब ये कि आपकी अपनी करेंसी अंडर वैल्यूड है, अगर वो 100 से प्लस आ गई तो इसका मतलब ये कि आपकी करेंसी ओवर वैल्यू हो गई है। सो इस वक्त जो है ना वो सिचुएशन यही हो रही है कि पाकिस्तान की करेंसी इस वक्त अंडर वैल्यू हो गई है, इस वक्त इतनी ओवर सेल हो चुकी है मार्केट में, इतना जो है वो हमने वैल्यू गिरा दी, इतने होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आफरीन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि यार वो अभी भी इंटरवीन नहीं कर रहा और उनको नहीं करना चाहिए। ये देखिएगा ये इस पे रिवर्स गियर जो है ना वो लगेगा आपकी करेंसी पे, बिकॉज ये भी आपकी करेंसी की जो है ना वो सही वैल्यू रिलीज नहीं कर रहा। सो अब जो है वो सिचुएशन जो है ना वो ये आती है कि ये इसलिए हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ता है यार, कि हम जो है ना अपने अपनी इम्पोर्ट्स को कवर नहीं कर पा रहे हैं, यानी पाकिस्तान हर कुछ सालों बाद एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के तक जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे पाकिस्तान जो है ना वो पहुंच जाता है, कुछ साल हर थोड़े सालों बाद जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पर पहुंच जाता है, और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पर जो है ना वो पहुंचने के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि फिर हम जाते हैं दूसरे मुल्कों से भीख मांगते हैं उनसे, यार हमें पैसे दे दे, कुछ डॉलर शॉलर दे दे यार, हमें ऑयल फैसिलिटी दे दे, फिर आप IMF के पास जाते हैं, और फिर आप IMF के पास आप जाते हैं तो पता ना IMF क्या कहता होगा, IMF कहता होगा आ गया तू फिर जवान होके, फिर पैसे मांगने, अब बच्चू आ तो उस पर मैं कैसी कंडीशंस लगाता हूँ। वो IMF हमसे चाहता क्या, देखिए मैं ये पहले भी ये बात कर चुका हूँ, हमारे IMF जो है ना वो जैसे कहते हैं ना कि हमारे एक नेगेटिव, हमारे एक एक, एक मनफी इस्तारा बन गया है, एक एक, एक, एक मनफी IMF तो दुश्मन है हमारा। यार IMF आपसे दुश्मनी नहीं चाहता, IMF आपकी इकोनॉमी में चीजें फिक्स करना चाहता है, आपने जो भंडे किए हुए हैं, आपने जो बेवकूफियां की हुई हैं वो उनको कहता है कि यार तू कब फिक्स करेगा इन चीजों को यार, बिकॉज IMF भी चाहता है कि यार तुम निकलो यार, अब इन चक्करों से खड़े हो जा अपने पैर पे, तेजा खड़े हो जा, बट दैट इज द थिंग। बहरहाल जी थैंक यू सो मच, हमारे एक लिसनर हैं और इकोनॉमिक्स के मामलों में काफी नजर रखते हैं, वो कहते हैं कि जो RER बताया आपने ये सितंबर के एंड का है, दैट्स नॉट ऑफ, मैंने कल पढ़ा इसलिए मेरी नॉलेज में एक कला है, बट कह रहे हैं जी अक्टूबर का जो RER है वो अगले महीने आएगा, और मुझे ऐसा लगता है, अच्छा RER फॉर सितंबर वॉज 96 यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसका मतलब ये कि अगले महीने शायद ये और जो है ना आपकी करेंसी अंडर वैल्यू हो सकती है। सो लेट्स सी क्या होता है इस चीज के हवाले से, अभी क्या सीन है, अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है कि आपको हम ले चलते हैं ब्रेक की, ब्रेक से वापस आके जरा इस पे बात करेंगे ना यार क्विंटन डीकॉक वाले एपिसोड के ऊपर, बिकॉज मुझे तो लग रहा है क्विंटन डीकॉक की गेम फिलहाल ऑफ हो गई है. सो ये मामला काफी सीरियस है यार, आजकल सीरियस बन गया है, इसलिए पॉलिटिकली बहुत ही गलत इनकरेक्ट काम जो है ना वो क्विंटन डीकॉक ने कर दिया. अभी हम बढ़े हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आके उसके ऊपर हम बात करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आप खुशामदीद कहते हैं द सनराइज शो विद मी अदील एंड ओके जल्दी से जरा बात करते हैं क्विंटन डीकॉक के हवाले से. जाहिर है कल साउथ अफ्रीका का मैच का आगाज होने वाला था और ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आई. पहले तो एक ट्वीट सामने आया क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से, यानी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, कि जी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये कहा है कि जी उनके खिलाड़ी दे विल बी टेकिंग द नी, यानी वो अपने एक घुटने के बल पर बैठ रहे होंगे मैच से पहले टू बेसिकली रेसिज्म के खिलाफ. ये एक सिम्बोलिज्म बन चुका है दुनिया में उसका मुजाहरा करने के लिए. उसके थोड़ी देर बाद ही ये खबर आई दैट क्विंटन डीकॉक ने जो है वो जाती वजूहात की बिना पर मैच एट प्लेइंग 11 से अपने आप को सेपरेट कर लिया, अपने आप को जुदा कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया है. जाहिर है ज्यादा टाइम लगा नहीं ये बात जानने के लिए कि क्विंटन डीकॉक ने अपने आप को जो ये सेपरेट किया है उसकी वजह जाहिर है ये है कि वो क्रिकेट साउथ अफ्रीका के इस डिसीजन के साथ अग्री नहीं करते. ही इज नॉट इन अग्रीमेंट विद देम. कहीं पे उन्होंने ओपनली ये बात नहीं बोली, उन्होंने खुल के ये बात नहीं बोली, लेकिन दुनिया ने ये देखा है कि इससे पहले जब भी खिलाड़ी साउथ अफ्रीकन भी नी ले रहे होते थे क्विंटन डीकॉक उनको ज्वाइन नहीं किया करते थे. अब इसके जरा बैकग्राउंड पे आ जाते हैं ना, इसका ये क्या है सिलसिला, हुआ क्या है, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि ये पूरा मामला है क्या, लेकिन इत्तेफाक की बात है कल हमारे एक एक्स कॉलीग है उनका भी मैसेज मेरे पास वॉइस नोट आया था. वो कह रहे थे कि यार ये हो क्या रहा है, ये क्यों घुटने के दम पे जो है घुटने के बल पे जो है ये बैठ रहे हैं और क्या कहानी है. तो देखिए जी इसका आगाज हुआ था अमेरिकन फुटबॉल, जो अमेरिकन फुटबॉल होती है ना वो जो बड़े पैडेड वैडेड और हेलमेट शेलमेट पहन के जो है वो खेल रहे होते हैं रग्बी. सो रग्बी की तरह का जो स्पोर्ट है उसके अपने रूल्स हैं. वैसे रग्बी तो बड़ा फ्लुएंट स्पोर्ट है, अमेरिकन फुटबॉल इज नॉट, स्टार्ट स्टॉप किस्म का वो गेम हो रहा होता है, लेकिन इट्स वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी रिच, बहुत अमीर खेल है. और अमेरिकन और कुछ हद तक कैनेडियंस जो हैं दे आर एब्सोल्युटली क्रेजी अबाउट दैट गेम. एंड आई हैव सीन द अमेरिकन पैशन अराउंड द फुटबॉल, दे कॉल इट द फुटबॉल. ओके सो बल्कि वो इसको फुटबॉल कहते हैं और जो हमारी असल वाली फुटबॉल है उसको एसोसिएशन फुटबॉल कहा जाता है. ठीक है, याद रखिएगा ये बात भी. तो जो अमेरिकन फुटबॉल थी इसमें एक खिलाड़ी थे जिनका नाम था कॉलिन कैपरनिक. ऑलराइट, ये कॉलिन कैपरनिक एक सिया फार्म खिलाड़ी थे. सिया फार्म इन दैट सेंस उनके वालिद साहब जो थे वो सिया फार्म थे, उनकी वालदा सफेद फार्म खातून ही थी. लेकिन एक दफा हुआ ऐसा कि अमरीकी नेशनल एंथम, ये सैन फ्रांसिस्को 49ers से मेरे ख्याल से खेलते थे, क्वार्टर बैक पोजिशन होती है, बड़ा मेन प्लेयर होता है क्वार्टर बैक जो होता है किसी भी टीम का. सो उस पोजिशन पे वो खेलते थे. अमेरिका का नेशनल एंथम वहां पे हर मैच से पहले पढ़ा जाता है. तो जब अमेरिका का नेशनल एंथम पढ़ा जा रहा था सो उस वक्त कॉलिन कैपरनिक जो है वो अपने एक घुटने के बल पर बैठ गया और उन्होंने अपना जो एक बाजू है, अपनी जो मुट्ठी है उसको फिजा में बुलंद किया. ठीक है जी, सबके लिए ऑब्वियस सी ये बात थी कि वो आखिर क्यों करना चाह रहे हैं. वो बेसिकली बताना ये चाह रहे थे, वो टॉकिंग अबाउट द रेसिज्म, द सिस्टमैटिक रेसिज्म दैट ब्लैक्स इन अमेरिका फेस करते हैं. यानी अमेरिका में जो सियाफाम लोग हैं, जो उनकी सोसाइटी में आज भी जो एक बिल्ट इन रेसिज्म है उसको वो फेस करते हैं, उसके खिलाफ ये खामोश एहतजाज था जो कि कॉलिन कैपरनिक ने किया था. अच्छा, अब ये अमेरिकन नेशनल एंथम के दौरान हुआ था. ये वो दौर था जो कि डोनाल्ड ट्रंप का दौर था. आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही नेशनलिस्ट आदमी बनता है, एक बहुत ही पेट्रियाटिक और हुब्बुल मुहिब वतन जो है शख्स बनता है, और उसको ये अदा पसंद नहीं है. उसने कहा कि ये अमेरिकन नेशनल एंथम की बेइज्जती की गई है, उसको डिसरिस्पेक्ट जो है वो दी गई है. और कॉलिन को अगर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना था, कॉलिन कैपरनिक को, तो उसके लिए वो कोई और तरीका ढूंढ सकता था, सोच सकता था, लेकिन कम अज कम वो ये नहीं करता. अच्छा, कॉलिन कैपरनिक को देखते देखते अमेरिका के और बहुत से सिया फार्म खिलाड़ी, बल्कि कुछ सफेद फार्म खिलाड़ियों ने भी जो है वो अमेरिकन नेशनल एंथम के दौरान दे स्टार्टेड टेकिंग द नी. ओके, वो भी अपने एक घुटने के बल जो है वो बैठना शुरू हो गए थे, अपना हाथ फिजा में हवा में बुलंद करके. डोनाल्ड ट्रंप इस पे गुस्से पे आ जा रहा था, बल्कि उसने जो है वो NFL यानी नेशनल फुटबॉल लीग अमेरिका में जो खेली जाती है उसके बहुत सारे जो मेंबरान, जो ओनर थे, टीम ओनर्स थे, उनको ये बात बोली थी कि इन खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन लो, इनको ड्रॉप कर दो, इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, बिकॉज दीज गाइज आर नॉट पेट्रियोटिक पीपल. ये लोग जो है मुहिब्बे वतन लोग नहीं है, इनके खिलाफ एक्शन लो. अच्छा, इसमें जो है ना वो काफी खैर प्रेशर बहरहाल आया, ओनर्स की तरफ से प्रेशर आया, खिलाड़ियों की तरफ, बिकॉज जाहिर है वहां पे भी तो उसी तरह के डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर वहां पे मौजूद, और बल्कि एक बहुत बड़ी फ्रेटर्निटी है अमेरिकन फुटबॉल लीग्स में जो कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सपोर्ट करती है. ठीक है जी, तो अब हुआ ये स्पेशली जो सदर्न टीम्स है उनकी, अमेरिका के जनूबी इलाकों की जो टीम है वहां पे वो काफी डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका में काफी पॉपुलर है डोनाल्ड ट्रंप अभी भी एक सर्टन सोसाइटी में. सो उस पर क्या हुआ, कॉलिन कैपर्निक जो है ही एक्चुअली लॉस्ट हिज कॉन्ट्रैक्ट, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया, और देयर वाज अ टाइम व्हेन ही वाज जॉबलेस, उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, नो टीम वॉज विलिंग टू हैव हिम. एंड उस जमाने में मुझे याद है दैट नाइकी सामने आया था, नाइकी ने कॉलिन कैपर्निक को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, और उसका पोस्टर मैंने बल्कि कराची में भी जो इनके फ्लैगशिप स्टोर्स वगैरह हैं वहां मैंने लगा हुआ देखा था. एंड आई वाज वंडरिंग हाउ मेनी पीपल एक्चुअली नो हु दिस गाय इज, बट इट वाज अ प्रीटी हार्ड हिटिंग कैंपेन अगेंस्ट रेसिज्म, क्योंकि जाहिर है कॉलिन का जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट था वो रेसिज्म के खिलाफ था अमेरिकन सोसाइटी में, अमेरिकन फुटबॉल में. सो खैर एनीवे, फिर क्या हुआ उसके बाद, एक मशहूर वाकया हुआ, रिमेंबर जॉर्ज फ्लॉयड, अगर आपको याद होगा जो ये वाकया हुआ था मिनियापोलिस, एंड वो तो पूरी दुनिया में कवर हुआ, पूरी दुनिया ने उसको देखा भी कि किस तरह अमेरिका के एक सफेद फार्म पुलिस वाले ने जो है वो जॉर्ज फ्लॉयड को, जो कि बजाहिर कोई ऐसा गैर कानूनी काम इस हद तक का नहीं कर रहा था या कर ही नहीं रहा था, वो बेचारा इनोसेंट आदमी था, उसकी गर्दन में जो है उसने नी रखकर, वही जो है वो घुटना रखकर उसको चोक कर दिया, और वो अपनी सांस बंद होने की वजह से जो है वो इंतकाल कर गया. नाउ एवरीथिंग गॉट कॉट इन टेप, ये भी देखा हमने, उस पुलिस वाले को सजा भी हो गई है, सब कुछ हो गई है, लेकिन ये तस्वीर हो गई वायरल, ये वीडियो हो गई वायरल. और इस वीडियो के बाद जो है वो BLM मूवमेंट, ब्लैक लाइव मैटर, अच्छा ब्लैक लाइव मैटर कोई नया नारा नहीं है, ये काफी अरसे से लगाया जा रहा है. आई थिंक बराक ओबामा के जमाने में शायद मैंने पहली बार ये BLM का नारा सुना था, लेकिन दिस BLM मूवमेंट बिकेम ग्लोबल, दुनिया भर में लोग जो है वो निकल आए सपोर्ट करने के लिए रेसिज्म के खिलाफ. जाहिर है इसका स्टार्ट अमेरिका से हुआ, लेकिन इसकी जो रीच थी इस पूरे नारे की वो ग्लोबल थी, पूरी दुनिया में थी, कि दुनिया में जहां कहीं भी रेसिज्म हो रहा है वहां इसको, उसके खिलाफ एक खामोश प्रोटेस्ट जो है वो ये किया जाए. इसकी जो एक मैनिफेस्टेशन नजर आई वो स्पोर्टिंग इवेंट, बिकॉज रिमेंबर कॉलिन कैपर्निक ही स्टार्टेड नीलिंग, इट वॉज अ स्पोर्टिंग इवेंट. तो स्पोर्ट्स दुनिया में बहुत सारी जगहों पर जहां पर भी हो रहे होते हैं, बहुत सारे, जरूरी नहीं है हर जगह ऐसा हो रहा हो, लेकिन जहां पर भी हो रहा होता है वहां पे इस तरह वो नील करते हैं, वो एक घुटने पे जो है वो बैठते हैं. इंग्लिश प्रीमियर लीग अगर आप लोग देखते हैं, इंग्लिश फुटबॉल के मुकाबले देखते हैं, वहां पे हर मैच से पहले जो है वो खिलाड़ी इस तरह ये नील ले रहे होते हैं. वेस्ट इंडीज ने क्रिकेट में इस रिवायत की बुनियाद डाली, दे टुक द नी बिफोर द मैच, से कुछ महीने पहले की ये बात है, और बाकी सारी टीमें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इसमें कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है. हमने ये बात देखी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो घुटने पे नहीं बैठते, बल्कि वो अपने सीने पे जो है वो हाथ रख देते हैं एज अ सॉलिडैरिटी, एज अ साइन ऑफ सॉलिडैरिटी. इंडियंस को हमने देखा कि वो घुटना पेज के बल पे जो है वो बैठे हुए थे, और क्यों कर रहे थे पता नहीं, बिकॉज अगर वाकई रेसिज्म और अगर नफरत के खिलाफ नी लेनी है तो फिर तो इंडियंस को IPL के हर मैच से पहले लेना चाहिए, बिकॉज उनके अपने मुल्क में बड़े मसाइल हैं, पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, एक तरह की बड़ी आपको बहरहाल क्या कह सकता हूं मैं. आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने ये ट्वीट किया, उनके कुछ खिलाड़ी मैच से पहले नी करते थे, कुछ नी नहीं करते थे. क्विंटन डीकॉक नेवर डिड दैट, आई बिलीव ही नेवर डिड दैट, इन फैक्ट इट वाज ऑब्वियस दैट ही इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, बिकॉज वो शायद ये समझता होगा कि ये मेरा जाती मामला है, दिस इज माय पर्सनल चॉइस, इफ आई वांट टू डू इट यस, इफ आई डोंट वांट टू डू इट नो, यू कांट फोर्स मी टू डू इट. लेकिन क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने उसको फोर्स किया ये काम करने के लिए, अपने खिलाड़ियों को ये काम करने के लिए, एंड देन क्विंटन सेड इनफ, बस जी बहुत हो गया, एंड ही सेड दैट दिस इज इट फॉर मी, वेरी अनपॉपुलर स्टेप दैट ही हैज टेकन. आई मीन अगर आप क्रिकेट साउथ अफ्रीका की बात करें या साउथ अफ्रीकन, क्योंकि मेजोरिटी वहां पे आपको पता है सिया फार्म लोग हैं, तो उनके लिए जो है ये काफी ऑफेंसिव बात इसने की है, दैट अपेरेंटली नी ना करने की वजह से उसने जो है नी करने की वजह से उसने जो है वो क्रिकेट छोड़ दी, यानी वो नहीं करना चाह रहा था, विच इज वाई ही हैज पुल्ड आउट ऑफ द साउथ अफ्रीकन स्क्वाड फॉर दैट मैच. Is this thing going to continue? ये आगे रहेगा या नहीं? हर्षा भोगले को मैं कल पढ़ रहा था और वो तो ये समझते हैं this is the end of his career for South Africa. South Africa में और भी बड़े मसाइल हैं. एक South Africa का अपना background है racism का, apartheid, ये सारी बातें. I wish I had more time. इसको भी हम recap कर लेते, but great. This is it for now. Thank you so much guys and congratulations to you all once again and for Pakistan's win. MashaAllah, the team is moving forward now. इस हफ्ते पाकिस्तान का तीसरा मैच भी फ्राइडे को खेल लेगा, and then inshallah after that अपनी जगह हम कंफर्म कर लेंगे इन द सेमीफाइनल. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह एक बार फिर. सो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.